mentioned. 15th January 1986, Avyakta Mudli, कुमारों से मुलाकात। कुमार जीवन भी लकी जीवन है क्योंकि कई कारण है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का, चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं, चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना, तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन, नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं, तो बंधनों में खींचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र, कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता है, कौन सा ख्याल?
सीढ़ी चढ़ने का।
सीढ़ी चढ़ने का और कौन सा ख्याल? उल्टी सीढ़ी चढ़ने का, परतंत्र होने का। और कौन सा ख्याल? लड्डू खाने का।
एक से दो।
खाने वाला भी पछताता है और न खाने वाला भी पछताता है, पर ज्यादा कौन सा, कौन पछताता है, प्रश्न ये है। अब क्यों? दो विकल्प है अरविंद भाई, एक है लड्डू खाना, एक है नहीं खाना, ज्यादा कौन पछताता है? ज्यादा कौन पछताता है? क्यों?
इलाज करना पड़ेगा फिर,
क्योंकि खाने के बाद ऑप्शन नहीं रहता, ना खाने वाले के
पास, ना खाने वाले के पास कौन सा ऑप्शन रह जाता है। कहावत है कि जो नहीं खाता है वो भी पछताता है और जो खाता है वही वो भी पछताता है। ज्यादा कौन पछताता है?
पहले बोलने में से खाने वाला पछताता है, क्योंकि उसमें कष्ट
है। किसमें कष्ट है?
खाने के बाद जो उसमें उसका जो परिणाम है।
क्या परिणाम? परंतु न खाने वाले के पास जो इच्छा है बची रहती, अपूर्ण इच्छा है, अपूर्ण तृष्णा है, उनका क्या? वो भी क्या कम जलाती है?
जिसने जिसने देख लेना खाए वो सब क्या हाल है, तो फिर कम हो जाता है। जिन्होंने खाया उनको पूछो।
खा तो लिया, एक ने खाया एक ने नहीं खाया, दो है। तो जिसने खाया अब खाने का संस्कार तो बना, टेस्ट तो आ गई, बाद में पश्चाताप किया कि नहीं खाना चाहिए था, पर नहीं खाना चाहिए था ये भाव तो है, परंतु वो कर्म का संस्कार, कर्म की स्मृति बनी हुई है। और भविष्य में अगर वही प्रलोभन, वही आकर्षण फिर से अगर आ जाए तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि फिर से वो खाए, चाहे कितने भी बड़े बड़े संकल्प कर ले, परंतु आंधी ऐसी चलेगी कि फिर से वही इच्छा उत्पन्न हो कि खाने की। तो यहाँ डबल पुरुषार्थ है, जो भोग भोगा है उस भोग की स्मृति को भुलाना, उस संस्कार से मुक्त होना। हाँ, अभी दूसरा जो है वो भी पछता रहा है, उसने खाया नहीं है परंतु इच्छाएं बाकी है, इच्छाएं है थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, दूसरों को खाते हुए देख के, क्योंकि जो खाते है वो ऊपर से थोड़ी दिखाते हैं हम पश्चाताप कर रहे, वो तो अंदर का भाव है, वो तो अंदर जल रहे मर रहे, परंतु बाहर थोड़ी कोई दिखाता है। हम यह अहंकार की बात नहीं कर रहे कल की मुरली वाली, हम यह काम की बात कर रहे हैं। वो कांटों की खुर्सी है या आग की? तो जो नहीं खा रहा है, इच्छाएं है, परंतु अगर ज्ञान बढ़ा दिया जाए तो वो इच्छाएं भी विलीन हो जाएगी। और पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ नहीं है जितना उधर है, उधर अधिक पुरुषार्थ है क्योंकि वहां स्मृतियां बन चुकी है, संस्कार बन चुके हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ वर्जिन पाथ है, यहाँ पर पुरुषार्थ मेहनत, क्योंकि वो स्मृतियां वो संस्कार नहीं है, इस जन्म के तो नहीं है कम से कम, इसके लिए आगे ज्यादा बढ़ा जा सकता है। तो बाबा पूछ रहे, कह रहे हैं कि कुमार जीवन भी लक्की जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता उल्टी सीढ़ी चढ़ने का, चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं या उतारा जा रहा है, या मर मर के उतर रहे हैं, या दुखी हो के उतर रहे हैं, या खुशी से उतर रहे हैं, या समझ रहे हैं कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है उतरने के सिवाय, मजबूरी से उतरना ही पड़ेगा। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कौन से भाग्य को? भटकने से बच गए, दुख से बच गए, धोखे से बच गए। उस दिन था ना मुरली में, तीन बातों से बच गए, भटकना, दुख और धोखा। और आज क्या कह रहे हैं? उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन, नहीं तो देखो कितने बंधनों में फंसे हैं, कितने बंधनों में फंसे हैं। शाहू भाई कौन कौन से बंधनों में फंसे हैं? परंपरा नहीं, गृहस्थी का बताओ, परंपरा है दूसरी, गृहस्थी के क्या बंधन है मंजू बहन? नहीं, जिनको अनुभव नहीं वो नहीं, जिनको अनुभव है वो बताएंगे, जो गए ही नहीं उनको क्या पता। गृहस्थियों के बंधन, माताओं संबंधों के बंधन, और पति को खुश करो, पत्नी को खुश करो, होते हैं क्या पर कभी खुश? न चाहते हुए भी करना पड़ता है। और माता जी कौन कौन से बंधन है? वो नहीं, गृहस्थ के बंधन बताओ। बच्चों के बंधन कौन से बंधन? खिलाने ला के दो, और उनकी पढ़ाई, उनका खर्चा, उनका डोनेशन, गलत आदत पे अगर हो गया है बच्चों को तो ज्यादा चिंता होती है माताओं को और पिताओं को, तो वो एक दूसरी चिंता। और बच्चों का हो गया, रिलेटिव्स संबंधी, शादी में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, नहीं गए तो संबंध बिगड़ते हैं। और प्रॉपर्टी, बाद में कोई साथ नहीं देता है, धोखा देते हैं, रंगीन कपड़ा पहनो, गहने पहनो, अंदर से थोड़े खुश भी होते हैं पर दुखी तो रहते हैं, परंतु थोड़ा इच्छा तो रहती है ना अच्छा अच्छा पहनने की। वो अपनी इच्छाओं को उसके आड़ में, सेवा के आड़ में थोड़ी पूरी भी कर देते हैं। करते हैं ना, जबरदस्ती पहन रहे हैं, परंतु थोड़ी सी तो थी। कितने बंधनों में होते हैं। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। डेविड ह्यूम कहता है कि मनुष्य तो मुक्त जन्म हुआ है परंतु चारों ओर बेड़िया ही बेड़िया है, चारों ओर। तो बंधनों में खींचने से बच गए, मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। रामकृष्ण परमहंस के पास उनका एक शिष्य था जिसने शादी की थी, भावनाथ। वो बड़ा भोला था, पर आके कहता था कि मुझे मेरी पत्नी के प्रति इतना प्यार क्यों है, अब तक तो वो थी नहीं, तब तो कुछ नहीं था, पर अब जो आ गई है तो इतना प्यार की होता है। बहुत ही नादान था बेचारा, क्योंकि जब तक कोई था नहीं तब तक तो कुछ था नहीं, पर अब है तो वही सब कुछ है, वही एकमात्र रियल सत्य, बाकी सब मिथ्या है संसार का। माँ बाप बाकी सारे मित्र भूल गए, बस वही रह गई है और उसी से प्यार है। ऐसा क्यों? वो कहते यही तो माया है, माया ऑल बिविचिंग माया। माया ऐसा है उसका प्रभाव कि समझ में ही नहीं आता है कि यही माया है, उसी के लिए सब कुछ करो, चाहे पति या पत्नी, उसी के लिए सारा जीवन भर प्रयत्न करते रहो, खुश करने का प्रयत्न करो, परंतु खुश कोई होता नहीं, सारा जीवन लगा दो, रिक्तता रह जाती है, अपूर्णता रह जाती है जीवन में, कितना भी कुछ करो। दैहिक संबंध से ऊपर उठने का प्रयास जरूर करते हैं, परंतु बार बार गिरते हैं नीचे। ऐसे गृहस्थी अध्यात्म में आ भी गए तो भी उनकी जो लगन है ईश्वर के प्रति, थोड़े समय रहती है फिर बुझ जाती है, थोड़े समय रहती है फिर बुझ जाती है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर नहीं होते, परंतु हाँ, यदि पति या पत्नी स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल वाइफ स्पिरिचुअल हस्बैंड, तो वो फैमिली स्पिरिचुअल फैमिली बन सकती है, जो एक दूसरे को इस पथ पर सहयोगी बने। परंतु एक भी यदि सहयोगी नहीं होगा दोनों में से, संघर्ष, सतत संघर्ष, सतत पीड़ा, वो पथ बहुत मुश्किल पथ है तब, क्योंकि संस्कारों की टक्कर, मनमुटाव, संघर्ष, बहुत सारी बातें उसमें आ जाती है। तो वो उनको वही कहते हैं कि ये मार्ग ही ऐसा है, जैसे वो चील होती है ना, आकाश में ऊंची उड़ती है, परंतु ध्यान उसका नीचे रहता है। कोई चूहा, कोई मांस का टुकड़ा, उड़ती तो है आकाश में, वैसे ही गृहस्थी अध्यात्म की जगत में ऊपर उड़ता है, परंतु ध्यान नीचे रहता है, कहीं कोई भोग, कहीं कोई विलास, कोई एंजॉयमेंट उसे मिल जाए, इतना आसान नहीं है।
लेकिन बाबा ने तो ब्रह्मा को चुना।
वो दूसरी बात है, वही कह रहा हूँ, ये संसार और भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहाँ जो परिवर्तन किया और कितने हजारों को बाबा ने चुना और उनको ऊपर उठा दिया, ये तो ईश्वरीय शक्ति का की कमाल है, उसके सिवा वो नहीं हो सकता है। परंतु उसके बाद भी सभी के साथ नहीं हुआ ना ऐसा, अभी भी कितने सारे संघर्ष कर ही रहे। हाँ, तो वो दूसरी बात थी, वो तो ईश्वर की शक्ति थी या असंख्य जो गृहस्थी है उनको सबको उठा दिया, परंतु आज के परिवेश में आज भी कितने ऐसे हैं जो फंसे हैं। एक चलना चाहता है, दूसरा नहीं चलना चाहता, दोनों में से इतनी उन्नति नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। उस वो गृहस्थी को वो उसी कहानी में तीन उदाहरण देते हैं, तीन प्रकार के उपवास। एक उपवास जो होता है वो संपूर्ण वाटरलेस निराहार, वो है सन्यासी की अवस्था, वो है संपूर्ण समर्पण की अवस्था, जो संसार का संपूर्ण बुद्धि से मन से त्याग कर देता है, कुछ नहीं चाहिए इस संसार का, यहाँ के किसी भोग की आवश्यकता नहीं है। फिर थोड़े दूसरे प्रकार के उपवास होते हैं जिसमें वो जल और संदेश मिठाई होती है बंगाल में, वो थोड़ा सा खा लेते हैं संदेश वो थोड़ा लोअर लेवल का। और फिर तीसरे प्रकार के उपवास वो थोड़े बीच के होते हैं, जो सत्संग में भी जाते हैं और कभी भोग में भी उतरते हैं, कभी सत्संग में जाते हैं कभी इधर और इधर, दोनों का बैलेंस, कभी ये भी कभी वो। तीसरे होते हैं वो थोड़े ज्यादा ही भोगी विलासी हो, कभी कभी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, कभी कभी महीने में एक बार तब याद आता है अभी जाना चाहिए, थोड़ा सत्संग करना चाहिए, वो भी थोड़े समय के लिए। उनका वो सत्संग का प्रभाव भी थोड़े समय ही रहता है, जैसे कोई तवा हो गरम, उसमें पानी छिड़क दिया जाए, वो कितने समय रहती है वो पानी की बूंदे, बस तभी तक उनका आध्यात्मिक चेतना तब तक जागृत होती है, फिर बुझ जाती है। उच्च कोटि के साधक निम्न कोटि के साधक, मध्य वर्ग के साधक, अलग अलग साधना के ये है। कोई है जो सोचते हैं कि बस यही एक मार्ग है और इसी मार्ग पर चलना है, और कोई मार्ग नहीं है, इस संगम युग पर पुरुषार्थ के अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं है। संसार की बहुत सारी इच्छा है जिसके पास है, संसार में जो बहुत नाम पद प्राप्त करना चाहते हैं, धन इकट्ठा करना चाहते हैं, कामिनी कांचन में डूबे जो है वो कभी इस मार्ग पर उतना नहीं बढ़ सकते, बढ़ेंगे परंतु उतना नहीं, जिनका एकमात्र लक्ष्य केवल ये मार्ग है। इसमें ही अंतर है, इसमें ही नंबरवार है। जिनको वो भी बहुत कुछ करना है और ये भी करना है, सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है जो कभी कभी, जब तक मधुबन में है तब तक पुरुषार्थ ठीक, मधुबन से बाहर गए कि उधर की दुनिया, उधर की लाइफस्टाइल चालू होती है, जब तक मधुबन में तब तक व्हाइट ड्रेस बैच बस तब तक ही है। जैसे ही बस में बैठे भट्टी पूरी हुई, ड्रेस चेंज, आए जिस ड्रेस में थे वो ड्रेस आ गया वापस कलर्ड, जब मधुबन में एंट्री की तब व्हाइट, बस में कलर, और उधर जाने के बाद में हर दिन अलग रंग बिरंगी। इतना आसान तो नहीं है ये मार्ग, अग्निपथ। यही तो है बाधा, जन्म जन्म के भोग के संस्कार, और उसके ऊपर यहाँ कहा जाता है युक्ति युक्त के नाम पर अपने आंतरिक वासनाओं को आत्मा तृप्त करती है, युक्ति युक्त के नाम पर, तोड़ निभाने के नाम पर वो सब भी भोगती है, परंतु ये मार्ग इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा बाबा को कभी डॉक्टर ने आके कहा था जब शुगर बढ़ गई थी और बीपी भी बढ़ गया था कि बाबा आप इतना जल्दी नहीं उठा करो, ये जो उठते हो ना और दिन में भी रेस्ट नहीं करते हो, इतना जगदीश भाई का अनुभव, जगदीश भाई ने लिखा है अपनी किताब में, इतना जल्दी नहीं उठा, ऐसे करो कुछ दिन तक अमृत वेला नहीं करो। तो क्या उत्तर दिया होगा? वैसे तो राइट थे, डॉक्टर का तो सुनना चाहिए, डॉक्टर कह रहा है, और दो तीन दिन की तो बात है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद में करना जो करना है। तो बाबा ने क्या कहा, मैं रूहानी सर्जन की सुनूं या ये रूहानी डॉक्टर की सुनूं या ये जिस्मानी डॉक्टर की सुनूं? ये कहता है अमृत वेला मत उठो, वो कहता है अमृत वेला उठकर मुझे याद करो, किसकी सुनूं? तो मनमोहिनी दीदी, बाकी दादियां सभी बाबा के पास गए, बाबा को बहुत समझाया कि बाबा कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के लिए, कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा मान लो जा। बाबा ने बिल्कुल नहीं माना, फिर बहुत जिद की, तब कहीं बाबा ने कहा अच्छा सोचूंगा, बाबा ने कहा सोचूंगा। और दूसरे दिन जब सभी अमृत वेला योग के लिए बैठे, बाबा चुपके से आके पीछे बैठ गए। तोड़ निभाना, इसका गलत गलत हाथों में शब्द अगर पड़ जाए तो कहां से कहां जा सकता है। इसके लिए सभी के लिए एक ही मार्ग है, एक ही सिद्धांत है, एक ही लक्ष्य है, जिसको जितना करना है करे, निराहारी उपवास या बहुत सारी चीजें बनाओ उपवास के दिन जो कि खाई जा सकती है, उसके ऊपर रिसर्च कि ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, सारी बुद्धि उसी में, सुबह ये खाएंगे शाम को ये खाएंगे, ये तो चलता है ना, वो भी चलता है, ये भी चलता है, सभी चलता है, खाओ क्यों कर रहे हो उपवास, नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो, फिर छोड़ो उसको। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र, कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता है थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते हो? अच्छा रहता है ना कोई साथी रहा तो,
बीमारी आ जाएगी
एक बीमारी ठीक है। साथी मिल जाए, सहयोगी मिल जाए, थोड़ा अकेले रहते तो कोई टिफिन पहुंचा दे, कोई पूछे कैसे हो, ठीक हो, बुखार कम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ चाहिए, कोई ले जाए हॉस्पिटल, खुद जा सकते पर कोई जब ले जाता है तो थोड़ा संतोष मतलब हम भी कुछ थोड़े बीमार हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है, हम भी क्या कम बीमार है, हम भी बीमार है। उसमें जो संतोष होता है आहा, कितनी खुशी होती है। और अगर डॉक्टर कहे एडमिट हो जाओ तब तो बात मत पूछो, खुशी होती है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी बीमारी कम परंतु उसका वो देखभाल ज्यादा, इसमें खुशी तो होती है। केयर करने वाले जब ज्यादा होते हैं, सलाइन की बॉटल में जब एक एक बूंद गिरती है तो वो देखते ही देखते कैसे पूरा गर्व से छाती ऐसी ये हो जाती है ना, एक एक बूंद गिरता है तो टप 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 अच्छा लगता है, हम भी तो कुछ है। एक हैदराबाद का भाई है, वो अनुभव सुना रहा था, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने को वो हॉस्पिटल लेके गया, वो किसी बड़े हॉस्पिटल में है तो बहनों को कुछ हुआ होगा बुखार या छोटा मोटा कुछ, तो वो लेके गया, डॉक्टर के लिए वेट कर रहे थे बाहर, आधा घंटा वेट किया, जब उनका नंबर आया तो एकदम इमरजेंसी आ गई, तो डॉक्टर वो इमरजेंसी में लग गया, तो वो बहनों को कहा अभी और थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, तो इतना गुस्सा आ गया उनको कि हम, तो उनको कहा गया क्यों, तो कहा एक सीरियस पेशेंट है, तो क्या हम सीरियस नहीं है क्या। कुमार अर्थात स्वतंत्र, जहां जहां डिपेंडेंस है, जहां जहां हमारी खुशी किसी और पर निर्भर है, कोई भी हो, फिर वो सहयोगी, साथी, स्नेही, पति, पत्नी, बच्चे, सास, ससुर, मित्र, संबंधी, बेटे, बेटी, कोई भी हो, जहां जहां हमारी खुशी किसी और पर निर्भर है वहां वहां दुख होगा। नियम है, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अकेले कोई नहीं, ऐसी अवस्था में ही ईश्वर की मदद आती है, तब तक नहीं। जब आप खुद ढूंढ लेते हो किसी को थोड़ा सा सहारा, वहां ऊपर की मदद रुक जाती है। जब संपूर्ण निर्भर होते हो एक पर, वहां पर मदद चालू हो जाती है। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता है कोई सहयोगी मिल जाए, साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते हो, बिल्कुल ख्याल नहीं आता। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, इतना डिपेंडेंस केवल एक पर, एक से ही प्यार, वो अगर मदद दे तो ठीक, अगर उसे नहीं देनी है तो वी विल सफर, जो है उसी में रहेंगे, पर परंतु किसी देहधारी से मदद नहीं लेंगे। इस तरह की मदद, स्नेह की, केयर की, अटेंशन की, यही चाहिए रहता है, एप्रिसिएशन की, हमने सेवा की, किसी ने हमारी स्तुति नहीं की तो दुखी हो जाते हैं, इतनी सेवाएं हमने की, किसी ने हमें पूछा तक नहीं, अरे पर तुमने जो किया वो तो जमा हो गया ना, जमा हुआ या नहीं हुआ। मधुबन में हमने सेवा की और हम गए, किसी ने बोला भी नहीं सेंटर पे पहुंचने के बाद, तुम कितनी अच्छी सेवा करके आए, पर जो हमने किया वो इतना गुप्त है कि वो जमा हो गया, वहां किसी को बताने की, दिखाने की, वर्णन करने की जरूरत नहीं है, वर्णन से तो कम होता है भाग्य। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ता पंजी, बंधन में फंसने वाले नहीं, कभी भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, तीव्र गति से, हर संकल्प हर सेकंड चढ़ती कला, जो अवस्था एक सेकंड पहले थी एक सेकंड बाद उससे आगे पीछे नहीं, यह है फास्ट पुरुषार्थ। आस्था, अवस्था, व्यवस्था, ऐसे कहते हैं हिंदी में। तो तीव्र गति से आगे बढ़ो, और उड़ता पंछी, पंछी जो पिंजरे में है वो बहुत दुखी होता है, हमें स्वयं को मुक्त कर देना है स्वयं को, परंतु उसके पहले ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि हम पिंजरे में है। कौन से पिंजरे में, कौन सी आदत, कौन सा संस्कार, कौन सा स्वभाव, कौन सी निर्भरता किसी व्यक्ति के ऊपर? क्या कोई व्यक्ति ही हमारा पिंजरा है? हो सकता है जिसे हम समझते हैं ये मेरे पुरुषार्थ में सहयोगी है, साथी है, आगे बढ़ाने वाला है, वही पिंजरा हो। या हम जो समझते हो जिसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, शायद वही सबसे बड़ी बाधा तो नहीं? जिसे हम समझते हैं ये सबसे अधिक सहयोगी है, वही सूक्ष्म बंधन तो नहीं? और वास्तव में इस मार्ग में जितना आगे बढ़ती जाती है आत्मा, बंधन उतने ही सूक्ष्म होते जाते हैं। इसके लिए ये नहीं समझ में आता है कि ये भी बंधन है। पिंजरे का एक पंछी इतना दुखी रहता है, उसके मालिक को एक बार कहता है कि वो मालिक कहीं सत्संग में किसी महान ऋषि योगी से मिलने जाते रहते हैं, जो अभी अभी गांव में आया है। वो कहते हैं जब उनसे मिलो तो उस साधु से पूछना कि मेरी मुक्ति का क्या मार्ग है। तो वो राजा की कहानी है, राजा जाता है नदी के पास, पता चलता है वो महायोगी नदी में स्नान कर रहे हैं। वो जब नदी के बीचों बीच होते हैं प्रार्थना करते हुए, राजा उस योगी से कहते हैं कि मेरा एक जो पक्षी है तोता, वो कहता है कि उसकी मुक्ति का मार्ग क्या है, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, उसको मुक्ति कैसे होगी। वो ऋषि उसकी तरफ देखते हैं, अपनी सांस को रोकते हैं और मर जाते हैं, और नदी उसे बहा कर लेके चली जाती है। राजा जब वापिस आता है तो वो तोता उससे पूछता है, क्या आपने उस योगी को, उस महात्मा को मेरे मुक्ति का कोई मार्ग पूछा? उसने कहा, पूछा तो सही, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक क्षण में उसने देह का त्याग कर दिया और उसकी जो मृत शरीर था वो बहाकर नदी लेकर चली गई। थोड़ी ही देर में ये जो पक्षी है, ये जो तोता है, वो भी मर जाता है। और राजा को आश्चर्य होता है, ये क्या हो गया, पक्षी कैसे मर गया? अब जब मर ही गया है तो क्या किया जाए, छोड़ दो उसको, दरवाजा करते हैं, छोड़ देते हैं, तो पंछी उड़कर चला जाता है। वो सोचता है, वो कहता है कि धन्यवाद उस योगी को, उस साधु को, उसने ही मुझे मुक्ति का मार्ग बताया, परंतु उसके स्वयं के प्राण तो चले गए। मुक्ति का मार्ग है मर जाना, मर जीवा जन। जैसे ही मरते हो आत्मा उड़ जाती है, ऊंची उड़ान भरती है। ओम शांति। अगले संडे की मुरली आप भी बता।